Grazie, Bollieta. Satsang Gatachi. Harvaras Kitara. वही नगरी के इस मैदान में संत जनों का सम्मेलन हो रहा है। आपने सुबह शोभा यात्रा में भी हिस्सा लेकर आनंद प्राप्त किया। अभी जो संतों के प्रवचनों का आनंद मिल रहा था, इसकी बात ही निराली थी। जैसे कोई गार्डन में चला जाता है, बगीचे में चला जाता है, वहां तरह तरह के फूल होते हैं। एक फूल को देखते हैं, जा उसकी खुशबू लेते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू है, बड़ा सुंदर है, कितना कोमल है। जब उसके बाद फिर दूसरे फूल को देखते हैं, उसके बारे भी यही कुछ कहा जाता है। ऐसे करते करते जितने भी फूलों को देखते हैं, खुशबू लेते हैं, चाहे वो बड़ा गुलाब का फूल, चाहे छोटा मोतिया या चमेली का फूल, सब आपो अपनी खुशबू ऐसे दे रहे हैं। जितना भी वो वातावरण है, सब खुशबूदार हुआ हुआ है। इसी तरह संत चाहे छोटे छोटे बच्चों के रूप में, उन्होंने आपके सामने गुरु भक्ति की चर्चा की, या किसी जवानी में अपनी बात को कहा विश्वास भरे हुए शब्दों द्वारा, चाहे किसी बुजुर्ग ने इस बात को दोहराया जो अपने जीवन के तजर्बे, जिस दिन से इस मिशन में आए और अपने तजर्बों की बात कहते चले जा रहे थे, किसी ने विश्वास की बात कह दी, किसी ने कह दी कि फूल को फूल खाए चला जा रहा है। जब ये बात सुनी तो वाकई फूल की तरफ ध्यान चला गया कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं, पर कांटे फूल को कुछ नहीं कहते। आप देखते हैं फूल खिलता चला जा रहा है। गुलाब का फूल, कितनी पंखड़ी है उसकी, मुलायम होती है और चारों तरफ उसके कांटे होते हैं। आपने देखा होगा कभी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह कांटे हाथों में लग जाते हैं, पर फूल के पंखड़ियों को कुछ नहीं कहते। वो उनकी राखी कर रहे हैं, पर बात यहां आकर ऐसी हैरानी की हो जाती है कि फूल जो है, फूल कोई नुकसान दे रहा है, कांटे नहीं दे रहे। इसी तरह मुझे एक बात याद आ गई, आगे भी आपने ये बात अनेकों दफा शायद सुनी हो, कि इसी तरह एक जगह पे काम करने वाले ऐसे कोई बात हुई तो सबको लाइन में खड़ा कर कर सबको कहा कि इसको एक एक पत्थर लगाते चले जाओ। जितने लोग थे उसको पत्थर लगाते रहे, फेंकते रहे, चोट आती रही, पर वो चुपचाप इस भक्ति के ध्यान में जुटा हुआ, सिमरन में जुटा हुआ सहता चला जा रहा था। फिर एक ने क्या किया कि वो तो उसके जानता था, उसका भेदी था कि ये ऐसे इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने क्या किया कि एक फूल उसकी तरफ फेंक दिया। जब उसको फूल लगा तो वो बड़ी जोर जोर से चचला उठा कि मुझे तो इसने मार डाला। सब हैरान हो गए कि ये क्या बात हो गई, इतने पत्थर फेंके गए, इतनी चोटें आई, इतना खून बह रहा है, तो उसने एक आवाज भी मुंह से नहीं निकाली। एक फूल लगा तो इतना चचला उठा, कहने लगा कि वो तो मेरे भेदी नहीं थे, वो मुझे नहीं जानते थे, पर ये तो जानता था कि मैं किस किस्म का आदमी हूं, इंसान हूं। इसने जो मुझे फूल फेंका, मुझे उसका बहुत दर्द पहुंचा, उसकी बहुत चोट पहुंची। तो आओ सत्संगत संत महात्मा, यही हर वक्त ही अरदास प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी भी आप श्रवण कर रहे थे संतों से अलग अलग तरीके से। तरीका चाहे अलग था, बोलने का लहजा अलग था, पर एक बात को ही बार बार दोहराए चले जा रहे थे कि परानी तू आयो ला लैन, लगो कित पकड़े सा मुक्ति चली रहन। हे प्राणों के मालक, तू इस दुनिया में लाभ लेने के लिए आया। सत्संग प्राणी हम किसको कह देते हैं कि जिसमें प्राण नहीं होते, चार इंसान उसको कंधे पे लेकर जा रहे होते हैं शमशान घाट की तरफ, कहते हैं कौन जा रहा है जी, प्राणी जा रहा है। उसमें तो प्राण ही नहीं, ये तो हमें आवाज दी गई, जिनमें प्राण चल रहे हैं, हमें सूझ है, समझ है, हमें हर बात की पहचान है। चाहे जानबूझकर हम अनगहली कर दें तो वो हमारे ऊपर बात बनती है। इसने तो हमें इतना अच्छा दिमाग दिया, दिल दिया, सोचने की शक्ति दी, और ये भी समझ साथ साथ दी कि कौन सा काम जो हमारे लिए दुखदाई है, कौन सा काम जो हमें सुख पहुंचाने वाला है। पर बात जहां आ गई कि जानबूझ के बावरे तय काज बिगाड़ियो, कहते हैं अचानक किसी से काम कोई खराब हो जाए, वो इतना अफसोस नहीं होता जो जानबूझकर काम को खराब करे, उसमें बड़ा अफसोस होता है। इसी तरह जिनको सारी उम्र ये प्यार का, सत्कार का, निम्रता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जैसा जैसा समय आया, जैसे जैसे गुरु पीर दुनिया में आए, पहले तो सत्संग जितने भी समय गुजरे उस वक्त तो जन्म नहीं हुआ था, पर जिस समय से ये जन्म हुआ वो भी मैं देख रही हूं। क्या वो बाबा बूटा सिंह का समा, क्या बाबा अवतार सिंह का समा, क्या बाबा गुरबचन सिंह का समा, क्या अभी बाबा हरदेव सिंह का समा, जिनकी छतर छाया हेठ का हेठ बैठ कर हम सत्संग इतना आनंद और खुशी और सुख सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे सुख हो रहा है कि जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठा होता है तो उसको कोई फिक्र नहीं होता, बड़े आराम से बैठा होता है, कहता मुझे माँ संभालने वाली है। इसी तरह ये भगत भी जब गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं तो सत्संग इनको भी पूरा ऐसे ही ठंडक, आनंद, प्यार मिलता है कि जैसे वो माँ बच्चे को प्यार दे रही होती है। जहां जहां तक निगाह जाती है, जैसे सात सिंह कहा कि तेरी एक तकनी मेरा है गुजारा। कहते हैं कि भगत के अंदर यही लगन होती है कि एक दफा जब सतगुरु निगाह भर कर देख लेते हैं तो हमारा गुजारा हो जाता है। हमें पता नहीं जाने कितनी खुशी मिल जाती है कि तेरा मुस्कुराना मेरी बंदगी है। कहते हैं कि तेरा मुस्कुराना ही मेरी बंदगी है और मुझे कुछ नहीं पता बंदगी क्या होती है। आओ साथ संगत, जिसके ऊपर भी ये दयालु हो जाए कृपालु हो जाए वो साथ संगत दुनिया में एक ऐसा भगत सामने आता है कि जाती दुनिया तक जुगो जुग बीत जाते हैं वो भगत का नाम कायम रहता है। तो आओ साथ संगत, अनेकों संतों ने हर तरीके से बड़े विशाल रूप से, चाहे भाषा कोई भी थी, चाहे महाराष्ट्री भाषा थी, चाहे इंग्लिश में कुछ बात कही गई, चाहे साथ संगत और किसी भाषा में, चाहे पंजाबी में, चाहे हिंदी में, गुजराती में, किसी भी भाषा में जो भी बात कह रहे थे भक्ति की, कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही थी। इससे पता चलता है कि भाषा का कोई भी कसूर नहीं होता, केवल इंसान का कसूर होता है। अगर उसी भाषा में, किसी भाषा में भी, पंजाबी हो, गुजराती हो, हरियाणवी हो, कोई भी भाषा हो, अगर किसी को गाली दी जाए तो वही भाषा खराब हो जाती है। अगर दूसरे की उस्तत हो, प्यार भरी बातें हो, तो वही भाषा सुंदर रूप देती है। तो आओ साथ संगत, क्योंकि महात्मा तो अगर ये कलाई पे घड़ियां ना हो तो जाने कहां कितनी रातें बीत जाए, कितने दिन बीत जाए। क्योंकि ये जवान जो है ये तो थकती नहीं। पहले भी महात्मा कह गए कि एक जीबा एक लख होए लखवीस, लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश। कहते हैं एक जबान सत्संग, एक जबान तो ये एक एक के मुंह में दातार ने लगाई है, लाखों तो नहीं लगा सकता। अगर लाखें जबाने इस एक के मुंह में लग जाए तो जाने वो कितना बदसूरत सा हो जाए। नहीं, ये जितने भी संत जन लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, ये जितनी भी जबाने हैं ये लाखों जबाने हैं। जैसे कहते हैं कि देखा जाए तो तेरी एक जबान भी नहीं, देखा जाए तो तेरी लाखों करोड़ों अरबों खरबों जबाएं हैं, देखा जाए तो तेरी एक आंख भी नहीं, पर देखा जाए तो तेरी इतनी आंखें अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। ये घट घट की जानने वाला होता है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास यही प्रार्थना करें, यही मांग मांगे के दातार कृपा करना। जबान दी है तो तेरी उस्तुति गाती रहे, कदम दिए हैं तो भाग भाग कर संगत में आती रहे, हाथ दिए हैं तो सेवा में जुटे रहे, आंखें दी हैं तो दीदार करती रहे, कान दिए हैं तो तेरा हरी जस सुनती रहे। सत्संग फिर बड़ा ही आनंद इस जिंदगी में आता है। तो आओ सत्संग, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया, आनंद पिया मेरी माए साध संगत को मां का रूप दे दिया। कहा कि आनंद मुझे मिल गया, कब मिला के जब से मैं सतगुरु को पा लिया, इसको जान लिया, जो इसने हमें रमे राम के दीदार कराए, जो सर्वव्यापी घट घट के मैं मौजूद है, ऐसे दीदार कराए तो सत्संगत फिर कितना जीवन में आनंद आ गया। तो आओ सत्संगत, हर वक्त ही हर इंसान के लिए जो भी इस दुनिया में बसने वाला उसके लिए भले की कामना करें, उसके लिए भला चाहेंगे तो हमारा होता ही चला जाएगा, उसके लिए सुख चाहेंगे हमें सुख मिलते ही चले जाएंगे, उनके लिए खुशी मांगेंगे तो हमें खुशी मिलती चली जाएगी, जो बीजेंगे वही फल मिलता है। हाँ, अगर नफरत का बीज डालेंगे तो नफरत ही मिलेगी। चंद लोग चाहे हमें कुछ सत्संगत कहें कि बड़ा अच्छा इंसान है, पर सत्संग नफरत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी जमीन में भी हम देखते हैं, जब जो भी खेती में डालते हैं बीज वही मिलता है। इसी तरह ये सतगुरु धरती धर्म है, जे आ कोई बीजे ते आ फल खाए। इस जमीन में भी जैसा बीज प्यार का डालेंगे तो प्यार मिलेगा, नफरत का डालेंगे नफरत मिलेगी, लालच का बीज डालेंगे तो आपको भी कोई लालची आगे से मिल जाएगा, क्रोध का बीज डालेंगे तो क्रोधी आपको भी मिल जाएगा। ये नहीं कि आप क्रोध का बीज डालते रहे नफरत का डालते रहे आगे से वो आपको प्यार देगा, ये कभी हो नहीं सकता। ये केवल एक सतगुरु ही कर सकता है और कोई इंसान नहीं कर सकता। तो क्योंकि इसके पास तो जो भी आता है अरदास करता है कि पिछले उगन बख्श ले प्रभागे मार्ग पाओ, ये पिछले उगन बख्श देता है जाने अनजाने जितने भी होते हैं, फिर आगे सद मार्ग दिखाता है, उस पे चलते रहें तो सत्संग फिर सुख ही सुख आनंद ही आनंद है। सत्संग जी धन्यवाद।